एक और बात यह है कि तवाफ के दौरान आप तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, मसलन आपको सूरत यासीन जुबानी याद है या कुछ, और आप कुरान पाक के हाफिज हैं तो आप कुरान पाक की तिलावत में भी तवाफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता है और दुआ नहीं मांग सकता, अल्लाह ताला उसको मांगने वालों से भी बेहतर अता करते हैं। तो इसलिए उस वक्त की ये भी एक बेहतरीन इबादत है, मतलब दिन में अगर 5 दफ़ा आप तवाफ कर रहे हैं उम्र के बाद रोज़ाना की रूटीन में, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तवाफ में आप एक खास जिक्र कर लें, दूसरे में कुरान पाक पढ़ लें, तीसरे में कुछ और कर लें, यानी बदल बदल के मुख्तलिफ चीज़ें, मालूम नहीं अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ आपकी पसंद आए और कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदे की हो। फिर इसी तरह यह है कि जब तवाफ आप कर लें तो फिर जमजम का पानी पेट भर के पिए और उस वक्त भी खूब दुआएं करें, क्योंकि ये भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। फिर इसी तरह यह है कि तवाफ के 2 नफल जब पढ़ें तो बेहतर यह है कि मकाम इब्राहिम के पास हो, वरना हरम में किसी भी जगह वो नफल आप पढ़ सकते हैं। उन नफल के बाद बैठ कर, मसलन अगर आपने किताबें पढ़नी है, मतलब मुझे कुछ दुआएं जैसे ज़बानी अभी तक याद नहीं है तवील होने की वजह से, या उनकी तरतीब भूल जाती कि कितनी दुआएं हैं, सारी नहीं याद रहती, तो मैं अमूमन ये करती थी कि वही जो छोटा बैग होता था उसमें दुआओं की जो किताबें रखी हुई हैं, जब 2 नफल तवाफ के पढ़ती थी तो उस वक्त बैठ के अपनी किताब खोल लेती थी और जितनी जी भर के किताबों में लिखी हुई दुआएं पढ़नी है वो पढ़ लें। इस वक्त में अपनी वो डायरी भी निकाल लें जो आपने लोगों से वादे किए थे दुआएं करने के, उसको भी निकाल के आप एक दफ़ा पढ़ के उन लोगों के हक में मखसूस दुआ कर लें जो वो चाहते हैं आपसे करना। फिर यह कि आप सही के लिए निकलेंगे, जब सही के लिए जाएं तो उस वक्त की दुआ जो है सही शुरू करने की, यानी सफ़ा से शुरू करेंगे, मरवा पे एक चक्कर। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ पढ़ी वो है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू अंजज वअदहू व नसर अब्दहू व हजम अल अहज़ाब वहदहू। कोशिश करें कि ये दुआ भी ज़ुबानी याद हो जाए, लेकिन अगर ना हो सके तो अपने बैग में छोटे से एक कार्ड पे अलग लिखी हुई, ये नहीं हो कि किसी किताब में, और वो धक्के पढ़ रहे हैं और आप वर्का ढूंढ रहे हैं, अगर आपने किसी मखसूस उस पर लिखी है तो इस तरह के जो निशान हैं या मार्कर हैं वो आप अपनी मखसूस दुआओं पे या मखसूस चीज़ें पढ़ने के लिए आप उनको वहाँ लगा सकते हैं, उसमें डिफरेंट कलर में भी लगा सकते हैं। आपको सही की दुआ शुरू करनी है और आपको नहीं आती तो जो ही आप सफ़ा पे पहुँचने लगते हैं अपनी किताब निकालें, फौरन उस जगह को निकालें और दुआ पढ़ लें। फिर उसके बाद ये कि सब सुतून या जो सब निशान के इलाके हैं उसमें मर्द हजरात को तेज़ चलना होगा मगर औरतें अपनी नॉर्मल चाल चलें, यानी मैंने बाज़ औरतों को देखा वो भी दौड़ रही होती है ना, देखा देखी, तो इस मौके पर ठीक है हजरत हाजरा जो थी वो दौड़ी थी, लेकिन हमारे लिए हुक्म क्या है कि उस जगह पर भी बावकार अंदाज में गुजरें। और यहाँ पर भी ये कि अगर सही का सिलसिला भी बीच में मुनक़ते करना पड़ा, मसलन आप थक गए हैं आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, आपको प्यास लगी आप पानी पी लें, यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा में आप मुकम्मल करके ही सांस लेंगे, बीच में रुक रुक के भी कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं खुशी से हो, सुकून से हो, इत्मीनान से हो, ताकि करने के बाद जब आप वापस आए तो आपके दिल में एक इत्मीनान हो, ये हसरत ना हो कि ओह पहला हज तो तजुर्बे की नज़र ही हो गया और अब एक दफ़ा और हज करना है जो सही करके करना है, तो उसके लिए हो सकता है आप दोबारा ना जा सकें, इसलिए उस तजुर्बे को भी बहुत आसान तरीके से करें। जो चीज़ समझना है रुक जाएं, ठहर जाएं, तसल्ली करके निकलें, भागम दौड़ नहीं मचाएं, और समझ के पढ़ के, यानी उम्रे और हज की जो किताबें आपके पास रखी होंगी उनको वहाँ पर दोबारा पढ़ लें, हर काम करने से पहले उस हिस्से को फिर से पढ़ के सोच समझ के जितना आपके बस में है अपनी तसल्ली करके आएं। शायद ये आखिरी हज हो, इसके बाद मौका ना मिले तो आपकी कोई हसरत ऐसी बाकी ना रहे। फिर यह है कि जब सही हो जाती है तो फिर बालों को काटना होता है, इसमें भी औरतें समझती कि शायद सारे बालों के आखिर में ट्रिमिंग करना ज़रूरी है, नहीं, आप ज़रूरी नहीं कि चुटिया के एंड से काटें, आप यहाँ से भी अपनी एक लिट निकाल के उतने हिस्से को भी काट सकते हैं, अगर पीछे से निकालना मुमकिन ना हो तो आगे से निकाल के कान के पास से भी कुछ काट सकते हैं, किसी हिस्से से भी आप इतने से बाल जो है अपनी 1.5 इंच इतना सा काट के आप फेंक सकते हैं। उसमें यह है कि कोशिश करें कि जब आप बाल काट रहे हैं तो कोई मर्द हजरात आपके बाल ना देखें, कई खवातीन को उस जगह पर देखा गया है कि वो चुटिया को सबके सामने खोल के निकाल के काट रही होती हैं और मर्द हजरात देख रहे होते हैं, इतनी तकलीफ़ और परेशानी होती है कि किस किस्म का उम्रा हो रहा है कि जहाँ हराम काम का इर्तिकाब है, क्योंकि औरत के बाल किसी मर्द को देखने नहीं चाहिए, वहाँ पर तो खास तौर पर इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। तो जब आपने उम्रा कर लिया, यहाँ पर आपका उम्रा ख़त्म हो गया। उम्रा जब आपने कर लिया, मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो बायां पांव पहले बाहर निकालेंगे और दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब फ़ضلك। अल्लाह के नाम से मस्जिद से निकलता हूँ, अल्लाह के रसूल पर सलाम हो, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा और अपने फजल के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। अब आप देखिए कि उम्रे के बाद आप एहराम खोल देंगे, यानी आपके ऊपर वो पाबंदियाँ जो हैं, बुनियादी तौर पर एहराम खोलने का मतलब ये नहीं कि इसका आप उतार के फेंक देंगे, इसका मतलब ये है कि उम्रे की जो पाबंदियाँ आप पर आयद हुई थी वो पाबंदियाँ अब ख़त्म हो गई। अब जब दोबारा आपको हज करना है तो 8 तारीख को दोबारा एहराम पहनेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। अब ये है कि हो सकता है आपके पास 2 हफ्ते हों वहाँ पर मक्का में ठहरने के, इन 2 हफ्तों को कैसे गुजारना है, इसके लिए दिन भर का अपना टाइम टेबल बनाएं और उस पर सख्ती से जम जाएं, वरना रोज़ाना के प्रोग्राम तब्दील करने से बहुत से औकात ज़ाया हो जाते हैं। उसमें यह है कि बाज़ औक़ात आपके रिश्तेदार या दोस्त या ग्रुप के लोग आपके साथ होते हैं, वो आपको कहते हैं इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठी जगह रखेंगे, इन चीज़ों से बाहर आ जाइए। इसलिए कि बाज़ औक़ात दूसरों के इंतज़ार में, मसलन नमाज का वक्त अजान हो रही है और आप चीख चिल्ला रहे हैं जल्दी बाहर आओ वाशरूम, लोग चले जाते हैं और निकलने का नाम नहीं लेते, ये वजू कर रहे हैं और किए चले जा रहे हैं, उनका वहम ख़त्म नहीं हो रहा, इस किस्म की बहुत सी बातों से बहुत वक्त ज़ाया होता है। तो जो भी आपके साथ हैं उनको अदब एहतराम से समझा दीजिए कि ये औकात बड़े कीमती हैं, ये वक्त और ये फुर्सत शायद फिर मिले या ना मिले, इसलिए अगर जाना भी है तो वक्त पर तैयार हो तो जाएं, और पहले से बता दें अगर आप वक्त पर तैयार नहीं तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। क्यों? अगर आपने पहले से बताया तो वहाँ नाराज़गी नहीं होगी, और अगर आपने नहीं बताया और आप निकल गए या आप रुके रहे और आप गुस्सा किए और एक दूसरे को डांट डपट रस्ते में होती रही, तो उससे फिर हज का जो है वो सवाब और वो जो एक रूहानियत की फ़िज़ा है वो ख़त्म हो जाती। और दूसरों को भी समझना चाहिए कि हम सब यहाँ इबादत के लिए हैं। बाज़ औक़ात एक शख्स का मूड है शॉपिंग का, वो दूसरे को भी खींचे चलो मेरे साथ, वो मैं वो चीज़ देख कर आई हूँ बहुत अच्छी है, तुम भी चल के देखो। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। देखिए चीज़ें तो दुनिया भर में मिलती हैं, अगर चंद दिन वहाँ चीज़ें ना भी देखी तो कोई बात नहीं, और अगर किसी वक्त कोई चीज़ ज़रूरत और आपको लेनी है तो आप ऐसे औकात में जाइए कि जब आप इबादत से थक चुके हों और आप थोड़ा अपने आप को फ़्रेश करने के लिए थोड़ा इधर उधर निकल जाएं, वरना नमाजों के औकात में, इबादत के औकात में, फ़्रेश औकात में, बाज़ारों में घूमना जो है ये अपने वक्त को ज़ाया करना है। अब यह है कि रोज़ाना आप तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें कि एक नफल का सवाब भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और तहज्जुद के वक्त की दुआएं भी कबूल होती हैं और अल्लाह का घर है सामने, तो दुआओं की कबूलियत के ख़ास मौक़े, इसलिए तहज्जुद की अजान से कुछ पहले ही उठ जाएं। और उठने के बाद यह है कि आप कोशिश करें कि मस्जिद में आकर आपको तहज्जुद की अजान मिले। जब आप घर से निकलेंगे दुआएं पढ़ते वक्त, जिक्र करते वक्त करते हुए, फिर आप वहाँ पहुँचेंगे मस्जिद में, मसनून तरीके से दाखिल होंगे, दुआ पढ़ के दाखिल होंगे, आप मस्जिद के नफल पढ़ेंगे और फिर अजान होगी, अजान का जवाब देंगे, अजान का जवाब देकर जो दुआ पढ़ी जाती है वो भी कबूल होती। बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से उस वक्त को ज़ाया करते हैं, यानी वो कबूलियत का वक्त है और लोग बातों में मसरूफ़ हैं या सो रहे हैं या किसी और शगल में हैं। तो कोशिश करें कि अजान आपको हरम में मिले या रास्ते में मिले। अगर रास्ते में मिलती है अजान, यानी 5 अजानों में से या तहज्जुद की अजान में से सब की बात मैं कर रही हूँ इस वक्त मुश्तरक तौर पर, तो आप अजान का जवाब दें, किसी से बात नहीं करें और उसके बाद खसूसी दुआ करें अपने लिए। फिर आप मस्जिद में पहुँचें, आकर मस्जिद के नफल पढ़ें, फिर तहज्जुद का वक्त है अगर तो तहज्जुद वहीं पर आप अदा करें, फिर फजर की अजान हो तो उसका जवाब दें, फिर उसकी दुआ पढ़ें, अजान के बाद की दुआ। इसके लिए प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, अगर किताब छोटी आपके पास हो तो उसमें मुख्तलिफ मौाक़े की, यह हिस्नुल मुस्लिम इंग्लिश तर्जुमे के साथ और उर्दू के साथ मौजूद है, उसमें भी मुख्तलिफ मौाक़े की दुआएं मौजूद हैं, उसको आप इसी तरह मुख्तलिफ पेजेस को मार्कर लगा के रख लें ताकि जिस वक्त, और अगर छोटा छोटा नोट लिखा हो तो जिस वक्त की दुआ आपको पढ़ना है या जो भी दुआ पढ़ना है फ़ौरन उस निशानी के साथ खोल लें, वर्क के बार बार पलटना और उसमें वक्त ज़ाया करना ये भी दुरुस्त नहीं, एक ही दफ़ा इंतज़ाम कर लें इन चीज़ों का। फिर जब आप वहाँ दुआ पढ़ लें, फिर उसके बाद फजर की सुन्नतें पढ़ें, अजान और नमाज के बीच का जो वक्त है, ये सारा दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त को आप या तो तिलावत में गुजारें, या जिक्र में गुजारें, या दुआ पढ़ें। इस वक्त में कुछ और ना करें, यानी अजान से लेकर नमाज तक के बीच की जो घड़ियां हैं, ये बड़ी कीमती हैं। इसमें सोते में वक्त गुजार देना अच्छा, जब शुरू होगी तकबीर होगी तो हम पहुंच जाएंगे, या बाजार घूम के, या बाज़ लोग क्या करते हैं, हरम में बैठे हैं, अच्छा बहन तुम कहाँ से आई हो, फलां जगह से, बातें और गुफ्तगू और अजानें हो रही, तकबीरें हो रही, कुछ हो रहा और कहानियां ख़त्म नहीं हो रही। और बाज़ ख़वातीन तो मुसलसल शॉपिंग की बातें, और शॉपिंग करके बाज़ों का अंदर ले आते हैं छुपा के और वो दिखाने की, यानी वहां जाकर भी हमारी दुनिया ख़त्म नहीं होती। अगर इतनी ही दुनिया से मोहब्बत है कि अल्लाह के घर में भी दुनिया नहीं भूलती, तो फिर और कहाँ भूलेगी। इससे फिर यह होता कि वो हज की जो रूह है, या मकसद है, या जो फ़ायदा है, वो हासिल नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि आजान और नमाज के बीच के वक्फे को खूब खूब जिक्र और दुआ में गुजारें। फिर नमाज हो गई, अब आपको जमात से नमाज पढ़ने का तरीका आना चाहिए, इसको सीख लेना चाहिए। और इसमें खसूसी तौर पर यह कि इमाम से पहले ना अल्लाह अकबर कहनी है, ना इमाम से पहले रुकू में जाना है, ना इमाम से पहले सजदे में जाना, ना इमाम से पहले सलाम करना है, यानी हर चीज़ में इमाम को फॉलो करना है। और मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना जो है वो 1 लाख नमाजों का सवाब है। इसलिए जब आप यहाँ से चले गए, बाज़ ख़वातीन को देखा है कि वो वहाँ जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती, वो कहती है कि औरत की नमाज घर में अच्छी। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि वो उनका घर कहाँ से, वो तो होटल है, वहाँ जहाँ आप रहते हैं वो आपका घर तो नहीं होता। तो होटल में नमाज पढ़ने से बेहतर है आप मस्जिद में नमाज पढ़ें। और मस्जिद में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर उसका तरीका आपको आना चाहिए, सफ़ों को दुरुस्त होना चाहिए, सफ़ें जोड़नी चाहिए। बाज़ अवक़ात ख़वातीन को सफ़ें नहीं बनानी आती तो उस सूरत में मुश्किल पड़ती है, नमाज का लुत्फ़ ख़त्म होता है। तो कोशिश करें कि आप जब जाएं तो ज़रा वक्त से पहले चलें, तो अगली सफ़ों में आपको जगह मिल जाए, जहां अमूमन लोग फिर कम आगे से क्रॉस करते हैं, या और संजीदा किस्म के लोग भी आगे जाकर बैठते हैं, जो बच्चों वाले या अमूमन इतनी दिलचस्पी नहीं होती तो वो साइड्स पर, ताकि जल्दी से निकल जाएं। तो ऐसी जगहों पर परहेज़ करें बैठने से। यानी अगर आप आए हैं अंदर तो कोशिश करें कि ज़रा आगे जाकर ऐसी महफूज जगह पर बैठें किसी पिलर के साथ, कि जहाँ कम से कम लोगों की आमदोरफ्त हो, जहाँ आप यकसुई के साथ इबादत कर सकें। फिर इसी तरह यह है कि नमाज के फौरन बाद मस्जिद से निकलने की कोशिश ना करें। ख़वातीन को ज़रा रुक के निकलना चाहिए, क्योंकि मर्दों के हुजूम होते हैं निकलते हुए, उस वक्त तो बहुत टकराव होता है, हत्ता कि जूता जब पहन रहे होते हैं तो पीछे से भी धक्के पड़ रहे होते हैं। तो कोशिश करें नमाज के बाद आप सुन्नत पढ़ें, सुन्नत के बाद नफल पढ़ें, एक्स्ट्रा नफल पढ़ें, तिलावत करें, जिक्र करें, दुआएं मांगें। और जब आप देखें कि अब रश छट गया है, फिर आप उठें और मस्जिद से बाहर आएं। फिर इसी तरह यह है कि अब इसका ये मतलब नहीं कि दुआओं और नमाज में इतना मशगूल हो कि आप किसी से कोई सलाम दुआई ना करें। जब आप नमाज पढ़ चुके, अपने काम से फारिग हो जाएं, तो फिर आप देखें दाएं बाएं कौन बैठा है, सलाम करें, बात करें और हाल चाल पूछें, अपने मुल्क के लोगों के भी, दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों के भी, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में जानें। क्योंकि हज का मकसद क्या है, लोगों की वहाँ मुलाकात भी हो, एक दूसरे से तारुफ भी हो, एक दूसरे से कुछ सीखा भी जाए। और उसमें आप थोड़ी बहुत दुनिया की बात भी अगर आप कर लेते हैं, खाने कपड़े की भी हल्की फुल्की, जब आप नमाज वगैरह से फारिग होकर हर चीज़ से बिल्कुल, तो उस वक्त में कोई हर्ज नहीं। लेकिन नमाजों के इंतज़ार के वक्त में नहीं, दुआओं की कबूलियत के वक्त में नहीं। फिर इसी तरह यह है कि उस वक्त में अपने पास छोटी छोटी कोई ऐसी चीज़ हो जो दूसरों को आप दे सकें, बांट सकें, वो अगर आप जाते वक्त यहीं से ले जाएं, मसलन दुआओं के कार्ड ले जाएं, कुछ मसलन शादी कार्ड घरों में विश कार्ड्स पड़े होते हैं फालतू बेकार, उनके ऊपर काट कर कुछ अपने हाथ से दुआएं लिख लें, वो आप मुख्तलिफ लोगों को, या अहादीस लिखी हुई हों वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। फिर इसी तरह यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इबादत के औकात की पाबंदी हो, तो फिर ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। बहुत हैवी किस्म की ग़िज़ा ना हो कि जिससे आपको नींद ही आती रहे। बाज़ लोग ग़िज़ाओं के औकात की पाबंदी नहीं करते, कभी किसी वक्त खा लिया, कभी किसी वक्त खा लिया, तो उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी जो रफ़ हाजत की आदत है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर फारिग हों और वक्त पर आप पाक हों, वक्त पर साफ हों, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि खाने के जो औकात हैं उनकी भी स्ट्रिक्टली पाबंदी करें। और उसमें खाना इस तरह का ना हो कि जिससे आपको मैदे में जलन शुरू हो जाए, या आप बार बार पानी पिए, या आपको सुस्ती और गनूदगी हो, या ये कि आपका स्टमक अपसेट हो जाए और वाशरूम बार बार जाना पड़े। ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ जाकर बहुत इबादत के वक्त को ज़ाया करती हैं। खजूर और जमजम का इस्तेमाल ख़ास तौर पर करते रहें। ये दोनों चीजें आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं, और जमजम के बारे में भी आता है कि जिस नियत से पिया जाए वो हासिल होती है। यानी अगर आप शिफा की नियत से पी रहे हैं या गिजा की नियत से पी रहे हैं तो कोशिश करें कि हरम में होते हुए दूसरा पानी ना ले जाएं, वही पानी बार बार पिए। खजूर अगर अपने बैग में भी थोड़ी सी साथ रखें, किसी वक्त इबादत के दरमियान शुगर लेवल लो होता है तो एक आध खजूर जो है वो अगर आप पॉलीथीन के लॉक होने वाले बैग के अंदर डाल के 3-4 रखी भी हो, ज़रा ज़्यादा भी रख लें, बाज़ों का 7-8 भी रख लें, क्योंकि होता है कि जब आप खा रहे हैं तो सामने कोई बच्चा बैठा है, दाएं बाएं कोई और बैठा है, तो उसको भी थोड़ा सा ऑफर कर दें, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आप खुद तो खा पी रहे हैं और लोग आपकी शक्ल देख रहे हैं। और मैं उस वक्त ये हदीस याद रखती हूँ कि आग से बचो खा खजूर का आधा टुकड़ा ही। तो सोचती हूँ कि ये बिल्कुल अनजान लोग हैं जो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, अगर इनको मैं कुछ दूंगी तो ये तो ना मुझे इनसे शुक्रिया की तवक्को होगी, ना मुझे तारीफ की, ना इसके बाद ये मेरा एहसान कभी उतार सकेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर एहसान करो कि जिनसे कोई वापसी की तवक्को ना हो, तो वो एक तरह से बेहतरीन सदका और बेहतरीन अजर होता है। अच्छी खजूरें मिल जाती हैं वहाँ पर, अगर आप ये समझे कि बाज़ोकत सिर्फ पैसे देने के बजाय कुछ खजूरें ही अपने पास रखें तो जो मांगने वाला नजर आए उसको भी आप खजूर भी सदके में दे सकते हैं। फिर इसी तरह यह है कि वहाँ पर बर्फ के पानी वाले कूलर भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, कोशिश करें कि बगैर बर्फ वाला पिए। अगर इससे सब लोगों की अपनी अपनी आदत होती है लेकिन गले के ख़राब होने के इम्कान कम होते हैं, और यह है कि उसमें इंसान को एक नेचुरल चीज़ मिलती है। जमजम में अगर बर्फ़ डाल देंगे तो ज़ाहिर है कि डाइल्यूट हो जाएगा कुछ, तो वहाँ जाकर तो प्योर जमजम पीने की कोशिश करें। फिर इसी तरह यह है कि साथ साथ अपना मुहासबा जारी रखें कि क्या मैंने अपने दिन का सही इस्तेमाल किया है, क्या मेरी नमाज में खुशू खुजू था, क्या मैंने सदका किया कुछ, क्या मैंने जिक्र अपने पूरे किए। बल्कि जिक्र जो जो करने हैं आपको उनकी एक लिस्ट बना लें, सुबह शाम की दुआएं पढ़नी है, या नमाजों के बाद जो मसनून अजकार हैं वो पढ़ने हैं, या फिर दीगर दुआएं पढ़नी, हिफाजत की दुआएं वगैरह पढ़नी है। अगर आप बीमार हैं तो आयात शिफा पढ़कर खुद पे दम करें। अहम तरीन चीज़ ये कि अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें, गम गुस्सा मोहब्बत इन सारे जज्बात पे बहुत कंट्रोल रखें। बाज़ोकात ऐसा होता है कि हमें आयात सुन रहे हैं तिलावत की वो समझ आ रही है तो रोना आ रहा है, इतनी बुलंद आवाज़ में ना रोना शुरू कर दें कि आदमी भी आपकी तरह मुतवज्जे हो जाए। बाज़ लोग हरम जाते हुए बहुत रोते हैं, आते हुए बहुत रोते हैं, यानी जब आखिरी वदाई तवाफ़ होता है तो वाकई रोना बहुत आता है, उसमें भी अतदाल रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ रोने में वक्त गुजर जाए और दुआओं का वक्त ही ना रहे। या इसी तरह कोई शख्स आपको इरिटेट करता है तो गुस्सा आता है, मसलन किसी ने आपको धक्का दिया तो अनकॉन्शियसली कौन ही आप पीछे करेंगे, तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। फिर इसी तरह यह है कि भूख लगी है तो बार बार हाय भूख लगी है और अभी तक खाने का मौका नहीं आया, और ये बातें भी बार बार ना करें। प्यास लगी तो हाय बहुत ही प्यास लग रही है, नहीं बस पानी पी लें, ये बार बार तस्करा करने की क्या ज़रूरत है। यानी लह और बेकार किस्म की बातों से हत्तुल बसा बचें। फिर उसके बाद यह है कि आपको हो सकता है कि मदीना जाने का मौका मिले और ये हज से पहले हो। हिजरत से पहले मदीना का नाम यसरब था, बाद में मदीना तय्यबा के नाम से ये मशहूर हुआ। मक्का से 260 मील के फासले पे है और आबादी के एतबार से फिर ये दूसरे नंबर पे है। इसे दारुल हिजरत भी कहा जाता है क्योंकि हिजरत के बाद ये घर बना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हज़रत इब्राहिम तेरे खलील और नबी थे, इनकी ज़बान पर तूने मक्का को हरम करार दिया। ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा और पैगंबर हूँ, मैं मदीना के दोनों किनारों के दरमियान तक हरम करार देता हूँ। यानी जिस तरह मक्का का हरम है इसी तरह मदीना भी हरम है। आपने फरमाया, अल मदीना तो हरम उन, मदीना हरम है, और मदीना का हरम जबल ईर से जबल सौर तक है, न इसका दरख्त काटा जाए न इसमें कोई बिदत की जाए, जो मदीना में बिदत ईजाद करेगा उस पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत है। आपने फरमाया, मदीना बुरे आदमियों को इस तरह निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे का मैल दूर करती है, यानी उनका या तो वहाँ दिल नहीं लगता या फिर ये रह नहीं सकते। आपने फरमाया, अगर लोग समझें तो मदीना उनके लिए बेहतर है। होता ही है कि जब हम मक्का जाते हैं तो हमारा शौक होता है कि ज़्यादा वहाँ रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए, लेकिन मक्का की मोहब्बत में मदीना की मोहब्बत को ख़त्म ना कर दें, या मदीना की मोहब्बत में मक्का की मोहब्बत कम ना कर दें। यानी दोनों में एतदाल बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग इन दो शहरों को हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं, मदीना में ये था मक्का में ये नहीं था, मक्का में ये था और मदीना में ये नहीं था। इस तरह की गुफ्तगू का भी इतना फ़ायदा नहीं। यह है कि दोनों शहरों का अपना मिजाज है, अपनी जगह, अपनी रहमत बरकत और फजीलत है, दोनों को ड्यू रिस्पेक्ट और मोहब्बत दें, दोनों में पहुंचकर वक्त की कदर करें और उन जगहों का अदब और एहतराम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान मदीना में सिमट कर ऐसे आ जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाता है। यानी आखिरी वक्त में दुनिया में जब हर तरफ बेईमानी हो जाएगी और दीन खत्म हो जाएगा, तो ईमान और दीन सिमट कर वापस वहीं लौट जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना इस्लाम का कुब्बा है, ईमान का घर है, हिजरत का मकाम है, हलाल और हराम के मालूम होने का ठिकाना है। आपने फरमाया, जो मदीना की मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करे, मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूँगा। तो जिस तरह मक्का जाकर आपने तकलीफ़ और परेशानी का जिक्र नहीं करना, इसी तरह यहाँ पर भी तकलीफ़ और परेशानी पर सब्र करना है, यानी किसी भी किस्म की जो हो। आपने फरमाया, सबसे पहले मैं जिन लोगों की सिफारिश करूँगा वो मदीना वाले हैं, फिर मक्का वाले, फिर ताइफ़ वाले होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मदीना में मरने की ताकत रखता हो उसको मदीना में ही मरना चाहिए, इसलिए कि मदीना में मरने वालों का मैं गवाह और जमानती बनूंगा। हर एक की किस्मत में तो ये नहीं हो सकता, लेकिन नीयत और तमन्ना करने में क्या हर्ज है, कम अज़ कम नीयत का ही सवाब मिल जाए। हज़रत उमर दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह तो अपने रास्ते में मुझे शहादत नसीब फरमा और अपने रसूल के शहर में मौत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के फलों के लिए दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना व बारिक लना फी साइना व बारिक लना फी मुद्दिना। ऐ अल्लाह तो हमारे फलों में बरकत दे, हमारे शहर में बरकत ही बरकत दे, और हमारे मुद्द और सा यानी तोलने के जो पैमाने हैं नापने के, उनमें बरकत अता फरमा। आपने फरमाया, खुदाया इब्राहिम तेरे बंदे और खलील और नबी थे, मैं भी तेरा बंदा और पैगंबर हूँ। हज़रत इब्राहिम ने मक्का के लिए दुआ मांगी थी और उसके साथ और ज़्यादा भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल को यानी फल के लिए दुआ मांग के वो फल किसी छोटे बच्चे को अता कर देते, यानी जब आप किसी फल को देखते थे तो उस वक्त ये दुआ पढ़ते। यानी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि लोग जब पहला फल देखते तो उसे आपके पास लाते, आप उसको लेकर ये दुआ पढ़ते जो अभी मैंने पढ़ी है, और फिर उसके बाद ये फरमाते और वो फल छोटे बच्चे को अता कर देते। आपने ये भी फरमाया है कि जो शख्स सुबह अजवा खजूर के साथ दाने खा ले उसको न जहर नुकसान देगा न जादू, ये मदीना की खास खजूर है। मुस्लिम की रिवायत में है कि मकाम आलिया की अजवा शिफा है, उसको नहार मुँह खाना तरियाक है, यानी तरियाक क्या होता है, जहर और जिसम में जो फासिद मादे उनको ख़त्म करने का सबब बनता है। एक और रिवायत में आता है कि अजवा जन्नत का फल है। इसी तरह मदीना का जो गुबार है, ग़ज़वे तबूक से वापस आप तशरीफ़ ला रहे थे कि लोगों ने आपका इस्तकबाल किया और आपसे आकर मिले, जिसकी वजह से गर्द गुबार उड़ा, तो आपके बाद हमराइयों ने अपने मुंह को ढांप लिया, कपड़ा डाल लिया। आपने फरमाया, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस गुबार में हर बीमारी से शफा है। यानी कि वहाँ की मिट्टी से भी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक यही क़याम फरमा रहे और मदीना की मोहब्बत की दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे जैसा कि मक्का की मोहब्बत हमारे दिलों में है, क्योंकि शुरू में सहाबा का दिल वहाँ नहीं लगता था बल्कि इससे भी ज़्यादा, और इसको हमारे लिए सेहत याब बना दे, क्योंकि बहुत से सहाबा वहाँ जाके बीमार हो गए थे, और उसके सा और मुद में बरकत अता फरमा और इसके बुखार को जहफा में मुंतकिल फरमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो मदीना की दीवारों को देखते तो मदीना की मोहब्बत में सवारी को तेज़ कर लिया करते थे। आप दुआ करते, ए अल्लाह तू मक्का से दुगनी मदीना में बरकत अता फरमा, ताकि लोगों का दिल वहाँ लगे और लोग वहाँ पर जम जाएँ, क्योंकि मक्का की मोहब्बत तो एक फितरी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह का घर है वहाँ पर, सबके दिल उसकी तरफ खींचते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, लेकिन मदीना के लिए फिर ये था कि हिजरत का घर था, एक नई जगह थी, तो आपने ख़ास दुआएं उस जगह के लिए की हैं। आपने फरमाया, मदीना की घाटियों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, न इसमें ताऊन आ सकता है न दज्जाल दाखिल हो सकता है। एक और रिवायत में आता है कि मक्का और मदीना के सिवा और कोई शहर नहीं जहाँ दज्जाल न जाए, मदीना की तमाम घाटियों पर फरिश्ते सफ बस्ता खड़े हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, और मदीना में खुसूसन मस्जिद नबवी जो है उसमें नमाज पढ़ना जो है बहुत अजर सवाब का बायस है। आपने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज दूसरी मस्जिदों की 1,000 नमाज से अफसल है, सिवाय मस्जिद अल हराम के, क्योंकि वहां लाख नमाजों का सवाब है। फिर इसी तरह आपने वहां पर जो रौजतुल जन्ना है उसके बारे में फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का हिस्सा बागीचा है जन्नत के बागीचों में से, और मेरा मिंबर मेरे हौस पर है। यानी वहां पर जो सफेद कारपेट्स का एरिया है आपके कब्र मुबारक और मिंबर के दरमियान का, वो रियाजुल जन्ना कहलाता है, वहां पर भी नफल पढ़ने चाहिए। फिर इसी तरह मस्जिद नबी के अलावा मस्जिद कुबा का सफर करना चाहिए, क्योंकि आप वहां तशरीफ ले जाया करते थे। आपने फरमाया, जो पाक होकर अपने घर से मस्जिद कुबा में जाकर दो रकत नमाज पढ़े तो उसको उम्रे के बराबर सवाब मिलता है, इसलिए खसूसी तौर पर उसकी ज्यारत करनी चाहिए। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जाने का मौका मिले तो कोई शोर, कोई हंगामा, कोई बेअदबी, कोई किसी को अजियत नहीं देनी चाहिए। बहुत एहतराम का मकाम है, बहुत ही खामोशी और यकसुई के साथ दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग वहाँ बैठकर भी गपशप में, सलाम दुआ, मेल मुलाकातों में, ये मिल गया, वो आ गया, उसको बुला रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, या दूसरों को क्रॉस कर करके आगे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, अपने कदम समेट के जाना चाहिए डरते हुए और अदब एहतराम के साथ, क्योंकि वहाँ जाकर अगर अदब एहतराम न रहा तो आमाल की बर्बादी का डर है। वहाँ पर जाकर बाकायदा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना चाहिए, फिर हज़रत अबू बकर पर सलाम भेजना चाहिए, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सलाम भेजना चाहिए, जिन हस्तियों को अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा के लिए रहने की सआदत दी उन कब्रों में, तो उनको भी अपनी दुआओं और दुरूद में और सलाम में याद रखना चाहिए। फिर इसी तरह मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर जन्नतुल बकी है, जहाँ हज़ारों सहाबा कराम की और नेक लोगों की कब्रें हैं, और उनके हक में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, तो बकीउल गरकत वालों की मग़फ़रत फरमा दे, और जो वहाँ दफन हो उसकी भी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। तो उस जगह पर जाकर भी अगर गुजरते हुए, क्योंकि अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं होती लेकिन उसकी चारदीवारी से पहचाना जाता है, तो बाहर से गुजरते हुए खसूसी दुआएँ जो कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए करनी चाहिए, सब सहाबा कराम का तसव्वुर ज़हन में लाकर जो वहाँ दफन है उन सब के लिए खसूसी दुआ करनी चाहिए। अब यह है कि मदीना से वापस आकर फिर जब हज का मौसम होता है तो 8 तारीख को हज शुरू होता है। इसमें आप देखिए कि 8 तारीख को आप अपने घर से ही या होटल से, जहाँ से भी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आप एहराम पहनेंगे 8 जुलहज को। 8 जुलहज का दिन जो है ये यौम तरबिया कहलाता है। यौम तरबिया इसलिए इसको कहते हैं, तरबिया का माना था सैराब करना। अहले अरब जब हज के लिए जाते थे तो अपने ऊँटों को अच्छी तरह पानी पिलाते थे इस दिन, यानी तैयारी का दिन है एक तरह से। जैसे कि आप जानते हैं कि हज तमत्तों में पहले उमरा होता है, जिसकी अभी तफसील आपको बताई गई है। उमरा के लिए मीकात पर पहुंचकर एहराम पहना जाता है या एहराम की नियत की जाती है। अहले यमन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वालों के लिए यलमलम का मकाम जो है ये मीकात है। अमूमन लोग जहाज़ से सफ़र करते हैं तो ये सब कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जो ही ऐलान हो उस वक्त आप एहराम की नियत कर सकते हैं। मीकात में पहुँच के एहराम की नियत करनी चाहिए, यानी घर से या एयरपोर्ट से नहीं नियत करते, बल्कि जब ऐलान होता है उस वक्त नियत की जाती। और एहराम बांधने से कबल जो है लब्बैक उमरा कहकर आप नियत करेंगे, क्योंकि नियत बहुत ज़रूरी है। साथ ही फिर ज़ोर से तलबिया पुकारना चाहिए। ये तलबिया के अल्फाज हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्नअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका सही तलफ्फुज़ जो है ये किसी से सीख लेना चाहिए, ताकि दुरुस्त अदायगी हो तो फिर अच्छी तासीर भी हो। जब हरम का इलाका आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ओनली मुस्लिम्स। जब इस जगह पर मैं पहुँचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, और शुक्र से आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह तआला शुक्र है कि तूने मुसलमान पैदा किया और हम इस जगह पे जाने के काबिल हुए, वरना डायवर्शन आती है कि नॉन मुस्लिम्स का रास्ता ये है। तो मुझे क़यामत का नक्शा नज़र आ जाता है, क्योंकि हज सारा क़यामत को भी याद कराता है। आखिरी सफ़र, यानी दुनिया में सफ़र करते हुए इंसान आखिरत को ज़्यादा बेहतर तौर पे याद करता है। जब मक्का पहुँच जाते हैं तो फिर आप जब तवाफ़ के लिए जाते हैं, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया बंद कर देना चाहिए। यानी ये एहराम की नियत से लेकर यहाँ पहुँचने तक लब्बैक पुकारते रहेंगे। बहुत से लोग भूले रहते हैं, इस تلبیہ کو بھولنا نہیں چاہیے. جس حج میں جتنا زیادہ یا جس عمرے میں جتنا زیادہ تلبیہ ہوگا اتنا ہی زیادہ باعث برکت ہوگا.